अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660, quicktrucklube.com।
First mortgage, second mortgage, ya fir hove loan,
socho na bas, bilkul bhi hone milao phone।
416-502-8000। स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या कख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000।
लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
चांदनी विक्टोरिया हॉल,
शादी, मंगनी, कॉर्पोरेट इवेंट, इज्तिमा, न्यू ईयर फेस्टिवल, ईद बाजार, शॉपिंग मेला या फिर कॉन्सर्ट।
फॉर ऑल एंड एनी इवेंट्स, अल्टीमेट वेन्यू,
मॉडर्न डेकोर, 1200 अफराद के बैठने की गुंजाइश,
नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड एंड सर्विस,
25 साल हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस,
32 rooms hotel to accommodate your guests,
Pakistani, Indian, West Indian cuisine, Chandni Victoria Hall। Call कीजिए 647-965-3823,
647-965-3823, 2935
Drew Road, Mrs. Saga, Chandni Victoria.ca। मिसेस सागा और इसके आसपास रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, ताज़ा सब्जियां, फल, मसाले, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड गोश्त और किचन की जरूरत का सब सामान, वो भी डिस्काउंट सेल प्राइस में। ओपन 7 days a week, सुबह 10 से लेकर रात 9 बजे तक। विजिट करें मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, 1010 ड्रीम क्रेसेंट, यूनिट 12 इन मिसिसागा, 9052861998, मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी।
स्टेशन साइट की सेल शुरू हो गई है। मिल्टन डाउनटाउन में आपकी मुनफरिद खूबसूरत रिहायश गाह जो शर्तिया बेहतरीन कीमत $487,990 से शुरू हो रही है। दो टावर से मुश्तमिल स्टेशन साइट की इमारत सेंट्रल पोडियम के जरिए इंडोर और आउटडोर सहूलतें पेश करती है। मिल्टन गो स्टेशन से मुंसलिक स्टेशन साइट मिल्टन फ्यूचर मोबिलिटी हब का संगे बुनियाद है, जो आपको बिना किसी रुकावट आपकी मंजिलों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। GTA के फलते फूलते सुनहरी मुस्तकबिल में अपनी इन्वेस्टमेंट को अनलॉक कीजिए और आज ही stationsite.ca पर रजिस्टर कीजिए।
ये नंबर नोट कीजिए जरा, 6475109494। पूछिए क्यों? क्योंकि ये नंबर है अली यासदानी का और वो है मॉर्गेज एजेंट और उनकी बात कुछ अलग है। पूछिए क्यों? क्योंकि अली यासदानी आपको लेके देते हैं सही रेट, सही टर्म्स के साथ सही मॉर्गेज। पूछिए क्यों? क्योंकि वो है अकाल मॉर्गेजेस के साथ।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अब हम पूछे कुछ, नंबर याद है ना आपको? 6475109494, अली यासदानी।
This holiday season, let's make a difference in the lives of children who need it most. Miracle on Main Street in downtown Milton is an engaging and inclusive holiday festival and charity toy drive in support of local children and families. Join Tiger Santa for Miracle on Main Street in downtown Milton on Saturday, December 9th from 2 p.m. to 8 p.m. There will be free amusement rides, entertainment, vendors, pony rides, tree lighting, and so much more. Free admission with a donation of a new unwrapped toy. For more information and to make an online contribution, visit miracleonmain.ca.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
आपके घर की खूबसूरती आपका जौक। खूबसूरत दिलकश किचन कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स, बाथरूम्स, कैबिनेट्स एंड काउंटर्स,
राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक,
यूरोपियन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी किस्म का रेजिडेंशियल या कमर्शियल, वुडवर्क, 3D स्क्रीन पर कस्टम डिजाइन का इंतखाब कीजिए। जदीद दौर का तकाजा,
राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक।
स्पेशल प्रोमो 12 मंथ्स, नो इंटरेस्ट, नो पेमेंट। काम आज करवाइए, पेमेंट 12 महीने में कीजिए। राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक, 647-300-8473।
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल स्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249। नान कबाब, मॉडर्न अफगानी किचन, लजीज अफगानी ग्रिल कबाब, चपली कबाब, चौपान कबाब, लैम शैंक, चिकन कोरमा प्लेट, फैमिली प्लेटर, कबाब रैप, फ्राइज, मंटू, बोलानी, फिरनी और सबके लिए बहुत से मजेदार खाने। अब आपके शहर मिसिसागा में एक और नई लोकेशन के साथ 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट F3, मिसिसागा। फॉर ऑर्डर्स एंड रिजर्वेशंस विजिट nankebab.ca।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीज़न की पहली शदीद बर्फ़ पड़ गई, और शदीद तो नहीं बस अच्छी बर्फ़ पड़ गई, और कुछ इलाकों में ज़्यादा पड़ी, कुछ में कम पड़ी, मगर इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा है, आप चादर लेके बाहर भी निकल सकते हैं। बहरहाल, दिस इज़ कैनेडा और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वाइट क्रिसमस ही होगी। चंद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हमारे फा मुजफ्फर हमारे साथ होंगे, जनाब अब्दुल माजिद जमाल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, और हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। स्पॉन्सर्स में मोमिन हलाल मीट का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। मोमिन हलाल मीट 1010 ड्रीम क्रेसेंट के ऊपर है, 1010 ड्रीम क्रेसेंट एंड टेरी फॉक्स के इंटरसेक्शन पे। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो हर चीज़ आपको सेल पे मिलती है। अगर आप गोश्त का जिक्र करें तो लैम्ब है, बीफ सेल पे है, चिकन मैरिनेटेड जो कीमे है, चपली कबाब का कीमा वो आपको मिलता है, बासा मछली मैरिनेटेड फॉर्म में आपको जो मिल रही है दैट इज़ 399 पर पाउंड, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस। मोमिन हलाल मीट 1010 ड्रीम क्रेसेंट, यूनिट नंबर 12, यू कैन नॉट मिस इट। ड्रीम क्रेसेंट एंड टेरी फॉक्स के इंटरसेक्शन पे, जैसा मैंने आपसे कहा, लैम्ब पे सेल है, 799 बीफ सेल पे आपको मिल रहा है, चिकन ब्रेस्ट, चिकन लेग्स, शोल्डर्स, एवरीथिंग ऑन सेल। आप एक दफ़ा तशरीफ जरूर लेके जाएं, चाहे मसाला जात हैं, दालें हैं और गोश्त वगैरह के लिए, 1010 ड्रीम क्रेसेंट के ऊपर। मेगा मनी एक्सचेंज, अगर आज डॉलर का रेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आज डॉलर का रेट आपको मिलेगा 213 रुपये आज का रेट है। मेगा मनी एक्सचेंज शिबाहत एंड मिसिस शिबाहत यहाँ पे होते हैं, 9052794754155। आप बहुत ही ख़राब हैं। नान कबोब, KABOB, आप जहन में रखिएगा। अगर आप गूगल करें, दे हैव 7 डिफरेंट लोकेशंस। हमारी रिक्वेस्ट है, आपने ग्रिल्ड फूड अगर ट्राई करनी है तो पहुंचिए नान कबाब पे। दे आर इन टोरंटो, दे आर इन स्कारब्रो, मार्कम, वॉन, मिसिसागा। नान कबाब पे आपने तशरीफ लेके जाना है। अफगान जायके और वाफर मकदार में खाना, क्वालिटी में, क्वांटिटी में एंड कस्टमर सर्विस में, नो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसोएवर। व्हाट अ कोइंसिडेंस साहब, आज एक बड़ी खूबसूरत सी पोम मैंने निकाली, جب میں نے یہ پوئم بڑی خوبصورت, میں باغی ہوں آپ کو پتہ ہی ہوگا, مگر یہ پوئم پنجابی کی ہے, عشق سلامت, اور ڈاکٹر جاوید جان کی یہ پوئم ہے, بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود اپنی یہ کتاب دی تھی محترمہ عارفہ صاحبہ کے لیے, اس میں سے میں نے ایک پوئم نکالی ماں تے ممتا. مجھے خود آج ایک دو چیزیں پہلی بار پتہ چلی. یس, مجھے اتنا پتہ ہے کہ شیرنی جب بچے دیتی ہے تو شیرنی خود سنبھالتی ہے, کیونکہ جو شیر ہے نا وہ میل شیر, بیکاز اس کے پاس جنگل کی بادشاہت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, تو میل شیروں کو وہ زندہ رہنے نہیں دیتا, ان کا ویری ہوا کرتا ہوتا ہے, تو شیرنی اپنے بچوں کی پھر خود حفاظت کرتی ہے. یہ جو نئی چیز میں نے اس میں سنی تو پڑھی تو یس آئی پیڈ اٹینشن, پھر مجھے خیال آیا کہ یس آئی مسٹ ہیو ریڈ اٹ, پھر میں نے اس کو گوگل بھی کیا تو مجھے اس کی وضاحت ملی. ماں, ماں بہت خوبصورت جذبہ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اور یہ نہیں کہ بھی جنت گلی باتیں لب جانی ہے, جنت ارن کرنی پڑتی ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت, مگر ماں اور ممتا کا تصور آج انہوں نے میرا کلیئر کیا ڈاکٹر جاوید جان اقبال نے, میں اس پوئم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی جب پروگرام میں شروع کرنے لگی تو تھوڑی دیر پہلے عامر جب میرے پاس آئے, ظاہر نیوز کو جب ہم تیار کرتے ہیں تو میں اپنے طور پہ نیوز تیار کرتی ہوں, آئی ڈونٹ نو وائی ڈڈ آئی مس اٹ. تو ممتا کے لحاظ سے یہ ایک آرٹیکل ہے اس وقت جو بی بی سی کے اوپر ہے کہ ایک فیملی جو وہی پشاور کی سائٹ پہ اپنا کاروبار کرتے تھے, کاروبار چل نہیں رہا تھا, دکان چل نہیں رہی تھی, دے وانٹیڈ ٹو موو ٹو کراچی, کیونکہ ان جو صاحب ہیں ان کی وائف ان کے پیرنٹس کراچی میں ہوا کرتے تھے, تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ تم کراچی میں آ جاؤ, ہم تمہاری نوکری کا بندوبست کر دیں گے. تو پھر اس خاندان نے اپنا سفر کا آغاز کیا, سفر کا آغاز کیا تو ظاہر ہے ماں, میں نے آپ سے کہا کہ ماں ایک جذبے کا نام ہے, اور بہت سی مائیں, ناٹ نیسسریلی کہ بہت پڑھی لکھی مائیں, بہت ساری پڑھی لکھی مائیں میرے جیسی نالائق مائیں جو شاید اپنے بچوں کو وہاں لے کے نہیں جا سکتی, اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتی, بٹ آئی ہیو کم اکراس ویری مینی مدرس جو شاید زیرو بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی, مگر ان کے پاس اقدار تھی, تعلیم تھی. یہ جو باقی چیزیں ہیں نا, یہ ڈگریاں, یہ شوشا ہو جایا کرتی ہے. ڈگری از مسٹ, مگر جب اس کو ہم کو شوشا بنا لیتے ہیں تو اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں رہا کرتی ہوتی. مگر مائیں ویژن کے ساتھ, ویژن کا نام اصل میں ماں ہے, مدرہڈ از بیسیکلی ویژن. میں ریسنٹلی ڈاکٹر محبوب الہی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی, یہیں ٹورنٹو میں تشریف ہوتے ہیں, بلکہ ان کے ایک بھائی بھی ڈاکٹر ہیں, ان کے دوسرے بھائی بھی جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں, ہی از آن ایلبین مال کے قریب ان کا کلینک ہے, ان کی بہن بھی ڈاکٹر ہیں, ان کی بھابھی بھی ڈاکٹر ہیں. تو جو ڈاکٹر صاحب اتنے فخر کے ساتھ, میں نے کہا یہ لوگوں کا کمپلیکس ہوتا ہے جب اپنی چیزوں کو, چھوٹی چیز کو بھی بڑا 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 کر کے بیان کرتے ہیں, مگر جو انسان فلی طور پہ سجا ہوتا ہے نا تمغوں سے, تو اس کو اپنے تمغے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر محبوب الہی ماجد بھائی یا انگریزی میں بات کرتے ہیں یا پنجابی میں بات کرتے ہیں, اینڈ بنیادی طور پہ ان کا تعلق ڈسکا سے ہے, اور ہی ٹیکس دا پرائڈ آف ہز گرینڈ فادر, اینڈ ہی سیز کہ میرا دادا بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا, مگر میری دادی تو بالکل ہی نہیں پڑھی لکھی تھی, مگر میری دادی کی ویژن تھی, اس کے پاس ویلیوز تھیں, انہیں ویلیوز کی بنیاد پہ گاؤں ڈسکا کے قریب کسی گاؤں سے ان کا تعلق تھا. اینڈ ڈاکٹر صاحب خود بتاتے ہیں اس بات کو, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو انجینئر بنایا, انجینئر بنا کے کینیڈا میں سیٹل کیا, بہت سے لوگ ان دنوں میں آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ سیٹل ہوتے تھے, پھر ہم سارے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے, اور ہر بچہ اسپیشلسٹ ہے, اور ہر بچہ یہاں پہ ڈاکٹر ہے, اینڈ دا ہول کریڈٹ گوز ٹو ہی گیوز آل دا کریڈٹ ٹو ہز گرینڈ ماں, دادی جی کو وہ اپنا کریڈٹ دیتے ہیں, ڈسکا کے قریب کسی گاؤں سے تھے. تو آج یہ جو آرٹیکل تھا کہ یہ عورت جب وہاں سے نکلتی ہے تو یہ بی بی روشن اس کا نام تھا, اور اس کے ہسبینڈ کا نام بلبل شاہ. تو بی بی روشن نے سب سے پہلے تو جس بس میں بیٹھنے لگے نا, اس بس کا جب انتخاب کیا تو دیکھا کہ ڈرائیور تجربہ کار ہونا چاہیے. اب جب یہ بس میں بیٹھ گئے تو یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ باپ کی گود میں تھا جو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو بچی ہے یہ ماں کی گود میں تھی, دونوں اپنی اپنی سیٹوں میں بیٹھ گئے. بس جب آگے کی طرف آئی تو شاید کوئی دشمنی ہوگی کسی اور کی بس میں, بہت سارے اور لوگ بھی سوار تھے, تو گولیاں جب چلنے لگی نا تو یہ عورت جو تھی, یہ جیسے اکثر بسوں میں آپ کو بتایا جب آدمی جا کے بیٹھتے ہیں تو عورت کو کھڑکی کی طرف بٹھا دیتے ہیں, آدمی درمیان میں آ جاتا ہے, تو آدمی درمیان کی طرف تھا, عورت کھڑکی
बच्ची की तरफ थी। जू ही गोलियां चलने लगी तो ये जो बच्ची इस औरत के हाथ में नजर आती है, इसने फौरी तौर पर अपनी बच्ची को अपनी गोद से लुढ़का के सीट के नीचे कर दिया और ये झुक के अपने शौहर की तरफ, क्योंकि क्यूरोसिटी में इंसान आंख उठा के देखता है कि गोली किधर से आ रही है, और ये औरत ना फौरन अपने आदमी के ऊपर गिरी और इसने उसे कहा कि बच्चा नीचे फेंक दो, सीट के नीचे फेंक दो, और आदमी का सर उठने ही नहीं दिया। इस औरत को 6 गोलियां लगी, ठीक है, गोलियां धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, और कहता है कि उसने सिर्फ इतना मुझे कहा कि बच्चे को तुम सीट के नीचे फेंक दो। और उसके बाद ये जो बस का ड्राइवर था, इसने बस को तेज कर लिया, आगे आगे बस की टक्कर हो जाती है, बस को आग लग गई। ये आदमी अपने दोनों बच्चों को जो सीट के नीचे से निकाल के कहता, जब मैं निकल रहा था तो बेशुमार लोग बस के बीच में ही, कोई ज़मीन पे गिरा पड़ा था, कोई मरा हुआ था, कोई ज़ख्मी था, तो फौरन जब पीछे मुड़ा तो ये औरत जो थी ना जख्मियों से छिलनी थी। ये है माँ और ममता, यानी इस औरत ने अपने शौहर को भी बचाया, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे के। तो माँ और ममता के ऊपर मेरी एक पोएम, मैं मज़े की बात है कि आज मेरी प्रेपरेशन के बीच में ये पोएम थी, डॉक्टर जावेद जान की है, बहुत खूबसूरत, कि माँ कितनी खूबसूरत हस्ती का नाम है। और कुरान पाक में अगेन मैनुअल ऑफ लाइफ का खास तौर पर जिक्र आ जाता है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए हकूक के बारे में क्या कहा है, और हम में से जब वो जीते होते हैं ना तो बहुत से लोग, हर बंदे से कुताही कहीं ना कहीं हुई जरूर होगी, होती है, लाजमी होती है। लिखते हैं, हर एक माँ दे पैरां थल्ले, हम अक्सर ये कहते हैं माँ दे पैरां थल्ले जन्नत होती है, जन्नत भी अर्न करनी पड़ती है, माँ की दुआएं लेना पड़ती हैं। हर एक माँ दे पैरां थल्ले रब दी जन्नत मिल नहीं सकती, जीवें हर एक रुख दे हेठां ठंडी मिठी छां नहीं हुंदी। बहुत खूबसूरत कि हर दरख्त के नीचे अगर आप बैठे हैं गर्मी में सस्ताने के लिए, बड़ का दरख्त बहुत ठंडक मिलती है आपको, पीपल का दरख्त बहुत ठंडक मिलती है, कीकर के दरख्त के नीचे चले जाएंगे तो आपको ठंडक मिलेगी नहीं वो वाली। हर एक माँ दे पैरां थले रब दी जन्नत मिल नहीं सकती, जिवें एक रुख दे हेठां ठंडी मिठी छां नहीं हुंदी। नागण ते वी माँ हुंदी है, नागण वी ते माँ हुंदी है, अपने बच्चे खा जांदी है, माँ नहीं ममता सब कुछ है। दिस इज नॉट माँ, दिस इज ममता। माँ नहीं ममता सब कुछ है, ममता दे बिन माँ नहीं हुंदी, खुशबू दे बिन फुल नहीं हुंदा, माँ ममता दा हिस्सा है, ममता हर शय दा गुल है, ममता ना है एक जज्बे दा। 100 बातों की एक ही बात, ममता हर एक रिश्ते दा कुल है, ममता ना है एक जज्बे दा, किसे दे विच हो सकता है, रिश्ता होवे या ना होवे, प्रेम ते खुद एक रिश्ता है, ममता प्रेम दा डूंगा सागर, जेड़ा मर्जी नावे तोवे, ममता प्यार मोहब्बत ते कुर्बानी दा अंतम ना, ममता दे पैरां दे विच जन्नत दी है ठंडी छां। यानी मां होना एक अलग मुकाम है, मगर मां के साथ ममता का होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, अल्लाह कहता है कि मां से मैं 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूं, तो क्या ममता का रंग अल्लाह में पाया होगा और जो अल्लाह ने मां को दिया। हर एक मां दे पैरां थले रब दी जन्नत मिल नहीं सकती, जिवें एक हर रुख दे हेठां ठंडी मिठी छां नहीं हुंदी, नागण वी ते मां हुंदी है, अपने बच्चे खा जांदी है, मां नहीं ममता ही सब कुछ है, ममता दे बिन मां है जिवें खुशबू दे बिन फुल, मां ममता दा एक हिस्सा है, ममता हर एक रिश्ते दा कुल, ममता ना है एक जज्बे दा, किसे दे विच हो सकदा है। नॉट नेसेसरीली, बाज़ोकात हम किसी और बच्चे के लिए भी अपने दिल में ऐसी मोहब्बत महसूस करते हैं जो जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। रिश्ता होवे या ना होवे, प्रेम ते खुद एक रिश्ता है, ममता प्रेम दा डूंगा सागर, जेड़ा मर्जी नावे तोवे, ममता प्यार मोहब्बत है, कुर्बानी दा उत्तम ना है, ममता दे पैरां दे वे जन्नत दी ठंडी छां है। डॉक्टर जावेद जान की इस पोम के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, और मैंने अभी आपके साथ जो कहानी शेयर की, कमाल की कहानी है, और ये हर इंसान के लिए कि औरत अगर अपनी वैल्यूज़ के लिए کو پروموٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے وہ بہترین عورت ہے. آپ اپنی اس عورت کی قدر ضرور کیجئے گا. آئیے صاحب یہاں سے آپ کو لے کے چلتی ہوں پاکستان کی چند ایک اور امپورٹنٹ خبروں کے لیے. ویلیج ٹیسٹ کے اوپر ضرور تشریف لے کے جائیں. پروگرام جب ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اس کا پورا کریڈٹ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈیو میں. ان دنوں میں ہم آپ کی کالز زیادہ لے نہیں سکتے مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آئی مسٹ ٹرن بیک ٹو مائی کالرز اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ یور کالز. مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بے شمار لوگ مجھے آپ جو مرضی کہہ لیجیے گا. آپ عقل مند ہیں, بڑے ہیں, کہہ سکتے ہیں آئی کین ٹیک اینی تھنگ آن مائی سیلف, مگر اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین رکھیے گا. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. دیٹس آل واٹ اٹ از. بعض اوقات وہ کہتے ہیں انسان بھرم کی خاطر بہت سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو میں نے اسی لیے کالز لینا چھوڑ دی تھی. مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آئی مسٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی اوریجن. امپورٹنٹ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس میں سب سے بڑی بات, پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوج صرف کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے سہولت کاری کر رہی ہے. اور صاحب ایک چیز, فواد حسن فواد, آپ کو تو یہ فواد حسن فواد وہ ہیں جن کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اتنے برے کرائسس میں سے گزر رہی ہے کہ اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ کوئی پی آئی اے کو فنڈنگ کرنا چاہے گی نہیں. حالانکہ آپ امیجن کریں کہ پی آئی کی بھری ہوئی فلائٹس یہاں سے جاتی ہیں, مگر پی آئی اے میں کرپشن ہے تو کہاں پہ ہے, اس کو کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. نگران وفاقی وزیر برائے نجکاری ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پی آئی اے میں بد انتظامی اتنی بڑھ چکی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے کہا کہ جب دیوار پر لکھا ہوا ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمیں فیصلے لے لینا چاہیے. اور فیصلے کیا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. انہوں نے کہا کوئی بھی اس وقت جماعت اقتدار میں آ جائے گی پی آئی اے کا بوجھ مزید اٹھانے کا آپشن اب ٹیبل پہ نہیں. یعنی پہلے فنڈنگ ہو جاتی تھی مگر اب اس کی فنڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں بد انتظامی اور اس میں چیٹنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بدقسمتی سے پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ سیاست میں دھکیلا جا رہا ہے جبکہ پی آئی اے میں بھی بد انتظامی اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان حالات میں پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنانا ناممکن ہی نہیں, مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. فواد حسن فواد نے پی آئی اے کی تباہی کی ذمہ داری تمام سیاسی جماعتوں پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ حیران کن طور پر سیاسی جماعت ترمیم کر کے گئی, وہی اس کے خلاف بول رہی ہیں. اور سٹیل مل کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ سٹیل مل اب ایک سکریپ سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے, یعنی یہ بھی ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے. اور فواد حسن نے کہا کہ 8 سال سے بند پڑی سٹیل مل سکریپ سے زیادہ کچھ بھی نہیں. 50 سال کے بعد سٹیل مل کی اثاثہ سٹیل مل نہیں بلکہ اس کی زمین ہے. انہوں نے کہا سٹیل ملز مینجمنٹ کام کا تو کوئی نہیں کام کرے لیکن چوری روکنے بھی ناکام ہے. یہ تو تھی ایک صورتحال. سو ہیڈز اپ اینڈ گیٹ ریڈی کے پی آئی اے بھی پرائیویٹائز ہوگی اور سٹیل ملز کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ظاہر ہے ہمارے یاروں کے یار جو ہندوستان میں بھی ویری سیٹلڈ ہیں اور سٹیل کا اور اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سٹیل مل بھی انہی کے ہاتھ میں چلی جائے. اینی ویز دیز آر دا فیکٹس, اس کو کوئی مانے یا نہ مانے دیٹس واٹ اٹ از. غزہ کی اور اسرائیل کی وار کے بارے میں بات کرتی ہوں مگر اس سے پہلے لے کر کے جانا چاہتی ہوں اپنے ایک اسپانسر کی طرف. ویلیج ٹیسٹ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. جناب فیصل چٹھا صاحب نے اس کو شروع کیا تھا اور الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اٹس ڈوئنگ ویری گڈ. ناؤ دیر آر ٹو لوکیشنز آف ویلیج ٹیسٹ. ایک لوکیشن ان کی 4141 ڈکسی روڈ پہ, دا سیکنڈ لوکیشن از آن لیک شور ان اوک ویل کے علاقے میں 9052269294. بہترین کھانا اور حلال کا اگر آپ ذکر کرتے ہیں, آف کورس ذبیحہ کا گوشت استعمال کرتے ہیں, 4141 ڈکسی روڈ یا 2294 لیک شور ویسٹ کے اوپر آپ کو ملتا ہے اسکاربرو میں ویلیج ٹیسٹ. یہاں سے میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں کہ غزہ کے حوالے سے. غزہ کی بات میں بعد میں کرتی ہوں. امریکہ نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں شاید اگلے الیکشن میں حصہ نہ لیتا مگر کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس لیے میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ ضرور لیجئے گا. مگر جو بائیڈن نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بائیڈن اسرائیل کی بھرپور امریکہ مدد کرنا چاہتا ہے اور یوکرین کی بھی مدد کرنا چاہتا ہے. اور یوکرین کے حوالے سے جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے یوکرین کی مدد روک دی تو یہ روس کی فتح ہوگی.
جس وہ جو نہیں چاہتے. اور یہاں پہ مگر آج بتانا چاہتی ہوں کہ اگر سینٹ کا ذکر کیا جائے تو سینٹ میں 49 سیٹس جو ہیں وہ ریپبلکنز کی ہیں, 48 سیٹس جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کی ہیں, اور 3 اس میں آزاد امیدوار ہیں. کل سینٹ میں بل پیش ہوا جس میں یوکرین کی اور اسرائیل کی جنگی مدد کے بارے میں ذکر کیا گیا جس کو کہ ریجیکٹ کر دیا گیا. سو اس کا مطلب ہے کہ وہی 51 ووٹس ہوئے ہوں گے, 2 آزاد امیدوار آ گئے ہوں گے ان کے ساتھ.
جو وائس پریزیڈنٹ ہے نا ان کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے.
وائس پریزیڈنٹ کا نہیں, وہ وائس پریزیڈنٹ کا ایک تب ووٹ ہوتا ہے کہ اگر ٹائی میں چلا جائے, ٹھیک ہے. اٹ ڈڈ ناٹ گو ان, اگر ٹائی میں گیا ہوتا تو وائس پریزیڈنٹ کا ووٹ تو ظاہر ہے جو بائیڈن کے ساتھ ہی ہونا تھا نا. کیا پھر آپ نے پھر مخمصے میں ڈال دیا نا مجھے.
نہیں
یہ تو ریجیکٹ ہو گیا نا, یہ ریجیکٹ اٹ از بین ریجیکٹ.
3 جو انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے اس کے فیور میں دے دیا
ریجیکٹ کرنے کے فیور میں, نہیں ریجیکشن کے لیے ووٹ ڈالا ہے کہ بھائی اسرائیل کی بھی مدد نہیں کرنی پیسے سے اور یوکرین کی بھی مدد نہیں کرنی. مگر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر پیسے سے مدد نہ کی تو پھر آپ کو فوج بھیجنی پڑے گی. چلو جی بھیجو جی. پھر سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے تمام ارکان نے ہنگامی امداد کے خلاف ووٹ دیا اور بل مسترد کرتے ہوئے امریکہ کی انہوں نے کہا کہ صرف انہی کو نہیں میکسیکو کے ساتھ بھی اپنی بارڈرز کو اور سرحدوں کو ٹھیک کیجیے گا. امریکن جو بائیڈن ہے نا, آئی ڈونٹ نو جو بائیڈن کو کیا گیا, وہ 50 ارب ڈالر کی نئی امداد کی فراہمی چاہتے تھے ٹورڈز یوکرین اینڈ ٹورڈز اسرائیل, ویئر ایز دس از ریجیکٹڈ ناؤ. ٹھیک ہے, ایک اسپانسر سے ملاقات, اس کے بعد لے کر کے چلوں گی آپ کو آگے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں جناب بلنکن صاحب, ان کا ایک بیان پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہائیں از اٹ ریئلی مسٹر بلنکن جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ مگر ہمارے ساتھ ہیں شیراز شفیق, مارگیج کی دنیا میں اکال مارگیجز کے ساتھ شیراز شفیق کا تعلق ہے. آپ نے ری فائنانس کرانی ہے, آپ کو تو انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھے, 13 تاریخ کو امریکہ کا دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف کو چلتی ہے. مگر کینیڈا میں وہ کہتے ہیں کہ جابز کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ کینیڈا میں گروتھ کوئی نہیں ہوئی, تو پتہ ہیڈ ٹو. مگر اس کے ساتھ انہوں نے ایک ڈسکلیمر بھی لگا دیا, مطلب ڈونٹ بی ویری بولڈ, تو دیز ریٹس مے انکریز نیکسٹ ٹائم. ٹھیک, ہمارے ساتھ
کہنے کی باتیں ہیں,
ہمارے ساتھ ہیں جناب شیراز شفیق صاحب, مورگیج اسپیشلسٹ ہیں, اکال مورگیجز کے ساتھ ہیں. ان اکال مورگیجز آج سے نہیں ہے بلکہ دس کمپنی اسٹل ورکس ود دا سیم رول اینڈ فینومینن. اور ان کا نمبر ہے شیراز شفیق کا 416-502-8000. شیراز شفیق, ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وی ایڈورٹائز 7 days a week ٹو آل آر اسپانسرز اینڈ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اٹس اونلی بیکاز آف آر اسپانسرز. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے تئیں اپنا پیغام دیجیے گا, اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیے گا, کیوں ہم شیراز شفیق سے رابطہ کریں. اور جو ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ لوگ اگر آپ سے رابطہ کریں تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان کی مورگیج کروا دیں گے. 416-502-8000. جی
دیکھیے آرفا جی, جہاں تک ہماری کمپنی کا تعلق ہے, ہماری کمپنی بیسکلی ہم لوگ پچھلے 20-22 سال سے مورگیج انڈسٹری کے اندر ہم لوگ سولوشن بیس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی سچویشن ہو, اکال مورگیج جو ہے وہ اپنے نام اور کام دونوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے. آپ کسی بھی قسم کی مورگیج دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ کوئی ریزیڈینشیل مورگیج دیکھ رہے ہیں یا آپ کو کوئی کمرشل مورگیج چاہیے یا کسی قسم کی بھی کوئی لائن آف کریڈٹ چاہیے یا ہوم اکوٹی لائن آف کریڈٹ چاہیے, ایون کہ آپ کوئی فرینچائز لون دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کوئی ٹرکنگ میں کوئی ٹرک بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹرکنگ کا کوئی آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے لون چاہیے, تو یہ سارے کام بیسکلی ہم لوگ انڈر اکال مورگیجز کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آج میں بیسکلی آرفا جی ٹاپک جو ہے وہ بیسکلی مورگیج رینیول بی لینڈرز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بہن بھائی ہیں جو بی لینڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی وجہ سے, چاہے ان کا کوئی پاسٹ میں کوئی انہوں نے کنزیومر پروپوزل کی ہوئی تھی یا پھر انہوں نے کوئی ان کی کوئی انکم شارٹ تھی یا پھر ان کی کوئی کریڈٹ اسکور کا مسئلہ تھا, کسی بھی وجہ سے اگر وہ گئے ہیں وہاں پہ تو اب ان کی رینیولز وغیرہ آ رہی ہیں, تو میں ان سب بہن بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھو آپ اپنی جو رینیولز ہیں ان کو ایسے ہی سائن کر کے نہ بھیجو. دیکھو جب آپ لوگوں نے اپنی مورگیج بی لینڈر سے کروائی تھی وہ اس وقت کی سچویشن کے حساب سے تھی, اب آپ لوگوں کی سچویشن چینج ہو چکی ہے. لیٹ سے کہ اگر اس وقت آپ کریڈٹ سکور کی وجہ سے کوالیفائی نہیں کر پائے اے لینڈر کے ساتھ, तो अब आपका क्रेडिट स्कोर अगर बेहतर हो गया है तो आप अगर रिन्यू करके भेज दोगे तो आपके सारे जो पैसे हैं वो इंटरेस्ट के अंदर जाएंगे, आपका प्रिंसिपल नहीं पे होगा। अगर आप कॉल करते हो, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करते हो, तो हम लोग ऑब्वियसली अगर क्वालिफाई करते हो आप तो आपको ए लेंडर से मॉर्गेज लेके देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे जो बहन भाई हैं जिन्होंने जिनके पास 10% मौजूद था, 10% उन्होंने प्राइवेट लेंडर से उठा के तो बी लेंडर से मॉर्गेज ली हुई थी। अब देखिए 10% उन्होंने पहले प्राइवेट से उठाया हुआ है और फिर ऊपर से बी लेंडर से मॉर्गेज है, उनका तो सारा पैसा ही जो है वो इंटरेस्ट के अंदर जा रहा है, उनका प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं पे हो रहा। तो अगर वो भी इसी तरह से साइन करके रिन्यू करके भेज देंगे तो वो भी फंस जाएंगे, तो उनके भी सारे पैसे जो है वो इंटरेस्ट में जाते रहेंगे, उनकी तो मॉर्गेज पे ही नहीं होगी फिर। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, देखो कि आप अगर कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो, मॉर्गेज को रिन्यू करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट एक मतलब कॉल करके अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करो, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर आरफा जी होता ये है कि हम लोग इन दोनों मॉर्गेजों को कंसोलिडेट करके एक मॉर्गेज भी कर सकते हैं, और अगर ये फर्दर क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग इनको इनकी इसी मॉर्गेज को उठा के ए लेंडर से भी करवा के दे सकते हैं। अब अपने बहुत सारे जो पैसे हैं वो सेव कर सकते हो इंटरेस्ट रेट की शक्ल में। अगर किसी भी वजह से आप लोगों को मूव करने का फायदा नहीं ना होता तो हम लोग खुद ही कहते हैं कि जी आप यहीं पे रहें, हम कोशिश करते हैं कि यहीं से आपको जो है अच्छा इंटरेस्ट रेट लेके दे सके। ये नहीं करेंगे कि फोर्सफुली आपको उठा के पैसे बनाने के लिए एक जगह से उठा के तो दूसरी जगह पे लेके, ऐसा नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, जब आप हमारे पास आते हो ना तो हमारे पास देखिए 90 लैंडर्स की बकेट मौजूद है, हम उन 90 लैंडर्स की बकेट में से आप लोगों के लिए अच्छा जो रेट है ना वो बेसिकली हंट करके लाते हैं। हम लोग देखते हैं अच्छा यार ये लैंडर ये रेट दे रहा है, ये लैंडर ये रेट दे रहा है, जो अच्छी प्रोडक्ट और अच्छा रेट आपकी सिचुएशन के हिसाब से होता है हम लोग वो आपको ला के देते हैं। अगर आप डायरेक्टली बैंक में जाएंगे तो बैंक ने आपकी सिचुएशन देखनी है, जो प्रोडक्ट आपके लिए होनी है बैंक ने वो आपके सामने रखती नहीं है, आपके पास चॉइस कोई नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, एक लैंडर ये दे रहा है, दूसरा लैंडर ये दे रहा है, तीसरा लैंडर ये दे रहा है, और आपकी बिहाफ के ऊपर हम लोग रेट हंट कर रहे हैं, रेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉल करो, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करो, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल सके कि जी आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद है, और स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनकी क्लोजिंग्स आ रही हैं, वो बिल्कुल ही वेट ना करें, वो कॉल करें, क्योंकि टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता, आंखें बंद करके खोलते ही एक महीना गुजर चुका है, क्लोजिंग सर पे है, फिर प्राइवेट लेंडर के पास जाना पड़ता है। डेली बेसिस के ऊपर हम लोग ऐसे केसेस देख रहे हैं, ऐसे सिनेरियोज हो रहे हैं और उनको प्राइवेट लेंडर से क्लोजिंग करवानी पड़ रही है, फिर वहां पे उनको अप्रेजल की भी प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टेज आ रही है, बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो पहले अगर प्रिपेयर होंगे, आपकी प्रिपरेशन होगी, आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो आप कुछ ना कुछ अरेंज पहले करके बैठे होंगे, और अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाएंगे तो फिर कोई ऑप्शंस नहीं बचेगी आपके पास। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कॉल करें और अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करें। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं जी, मेरा नंबर नोट कर लें, ट्राफिक अकाल मॉर्गेज 416-502-8000, 416-502-8000। याद रखें कि अगर हम लोगों ने आपकी फाइल को रिव्यू करके एक मतवा ओके कह दिया तो हम हमेशा अपने वादे पे पूरा उतरते हैं।
बहुत शुक्रिया जनाब इशराज शफीक साहब, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमारे साथ शामिल होकर तमाम इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। 416-502-8000, 416-502-8000। ये तो थी एक खबर, एक और इम्पोर्टेंट चीज शेयर कर रहे हैं फिर इशराज शफीक, आपका शुक्रिया एक बार फिर से। अमेरिका के बाद ये साहब एंथनी ब्लिंकन का जो एक पैगाम मेरी नजर से गुजरा कि अमेरिका ने जो इसराइली आबादकारों पर वीजा पाबंदियां लगा दी हैं, इट्स क्वाइट नेक्स्ट टू अनबिलीवेबल लगती है। मगर कहते हैं कि अमेरिका के बाद बेल्जियम ने भी इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां लगा दी हैं, मगर ये थोड़ा सा मामला कुछ चेंज हुआ हुआ नजर आ जरूर रहा है। आपको बताइए कि अक़्वाम मुत्तहिदा के जो हैं सेक्रेटरी एंटोनियो ग्रीस जो हैं उन्होंने चार्टर का उन्होंने 2017 से ये ऑफिस में 2017 या 2018 से इन्होंने आर्टिकल 99 का फर्स्ट टाइम अपने इस दौरान में एंटोनियो ग्रोत्रिस ने अपने आर्टिकल 99 का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 99 के तहत इन्होंने लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसराइल में 1200 अमवात के बदले में गजा में 15,000 के करीब अमवात हुई हैं, जिसमें बच्चों में और बच्चों की मौतें बहुत हैं, औरतों की हैं, प्रेगनेंट औरतों की, डिलीवरी کے ٹائم پہ. اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں بمبنگ ہوئی ہے اور انسانیت کو شدید خطرہ ہے, جس کا جواب فوری طور پر اسرائیل کی طرف سے دیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ انتونیو گوتریس کے جو یہ جو آرٹیکل 99 کا استعمال ہے, اس کا مقصد ہے کہ ہی از ان فیور آف حماس. سو اس خطے میں سے حماس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. انسانی بحران کے خطرے کا اظہار کیا گیا ہے, اور انہوں نے اپنی اس ٹینیور میں, جس میں ان کی ملازمت کے عرصے کے بیچ میں فرسٹ ٹائم انہوں نے آرٹیکل 99 کا استعمال کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی, آپ سوچئے گا 1200 ورسز 15,000 ڈیتھس ہیں, اور اس کے بعد ڈسپلیسڈ لوگ کتنے زیادہ ہیں, ہاسپٹلز میں بامبنگ کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کے نفاذ کا جواز پیش کرتے ہوئے انتونیو گوتریس نے کہا کہ سلامتی کاؤنسل کے صدر کو انہوں نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں صورتحال تیزی سے ایک انسانی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے, جس سے ممکنہ طور پر فلسطینیوں اور خطے میں امن اور سلامتی کے لیے ناقابل واپسی اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. مگر صاحب آرٹیکل 99 اب ہے کیا؟ آرٹیکل 99 میں کہا گیا کہ سیکرٹری جنرل سلامتی کاؤنسل کی توجہ کسی بھی معاملے کی طرف کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ, اٹس اے ویری سیریس سینیریو ایٹ دی مومنٹ, یہ آرٹیکل سلامتی کاؤنسل کی توجہ کسی بھی معاملے پر لانے کا مطالبہ کرتا ہے جو سیکرٹری جنرل کی رائے میں بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ ہو. آپ کو پتہ ہی ہوگا اس سے پہلے اسرائیل نے کہا تھا کہ انتونیو گوتریس جو ہیں وہ جس پوزیشن کے اوپر کام کریں اس کے اہل نہیں ہیں, ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. مگر اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اقوام متحدہ سے انتونیو گوتریس جو ہیں یہ حماس کی کھلے عام طور پہ ہمدردی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آرٹیکل 99 کو بہت زیادہ وسیع پیمانے پر تشریح بھی کی, جس کی وجہ سے انہوں نے حقائق کی کھوج, آزادانہ تحقیقات اور بحران کی روک تھام کے لیے معلومات اکٹھی کرنے کا اختیار فراہم کیا ہے. اسرائیل کا رد عمل میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ٹویٹ کیا ہے کہ آرٹیکل 99 کو فعال کرنے کی آپ کی درخواست اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ دہشت گرد تنظیم حماس کی حمایت کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے. اسرائیل کے وزیر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جو بھی عالمی امن کی حمایت کرتا ہے اسے حماس سے غزہ کی حمایت کی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو تھی ایک صورتحال انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر. ٹورنٹو کی طرف بھی لے کے آنا چاہتی ہوں, مگر ٹورنٹو پہ لانے سے پہلے میں اپنے چند ایک اسپانسرز کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. بہت سے لوگ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو اگر دیکھ رہے ہیں, اٹس ویری ہاٹ ایٹ دا مومنٹ, ویری ہاٹ. آئی مین جو لوگ ہیں ظاہر انٹرسٹ ریٹ خیال کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ تھنگز ول بی فائن, اللہ کرے دنیا میں کہیں اور جنگیں نہ شروع ہوں اور یا یہ جنگ کی آگ جو ہے آگے کی طرف نہ بڑھے. تو ہوپ کرتے ہیں کہ بائی جون جولائی انشاءاللہ تھنگز ول سٹارٹ گوئنگ ان دا پازیٹو ڈائریکشن. مگر جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہو تو ضرور سوچئے گا 13 تاریخ کو. نہیں میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہی تھی. 13 تاریخ کو آپ کو بتائیے ہوگا کہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ ریٹس کا حساب کتاب ہونا ضرور ہے. لیٹس سی کہ بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے.
آئی تھنک آپ بڑھائی کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ریڈیوس کرنا شروع کرنا چاہیے.
چلیے ریڈیوس نہ کریں تو ایٹ لیسٹ ایک جگہ پہ کھڑا تو کریں. مگر ٹورنٹو کینیڈا نے تو کمال کر دیا, 3 دفعہ انٹرسٹ نہیں بڑھا. دیٹس آل واٹ اٹ از,
اتنا بڑھا دیا کہ لوگوں کو سانس لینے کی تو
نو ماجی جمال. جو پرائیویٹ لینڈر تو بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں, بہت زیادہ. اور اس وقت جتنے آپ کو بلڈرز نے جتنا قہر مچایا ہوا ہے, یہاں پہ 5% تک بینک آپ کا انٹرسٹ ریٹ لے کے آئے ہیں, مگر یہ جو بلڈرز ہیں لوگوں کو اس وقت میں مارگیجز نہیں مل رہی. آکیوپینسی کے اوپر بلڈرز جو ہیں 7.5% سے 9% کے درمیان چارج کر رہے ہیں. دے آر میکنگ ہیک اے لاٹ آف منی اینڈ دے آر ناٹ ریڈی کہ بھائی ہاں جی نہیں ہم کلوز نہیں کرتے. بھائی تم کیوں نہیں کلوز کرتے؟ اف سمبڈی ہیز منی وائی وڈ دے پے یو انٹرسٹ, وہ بھی 8% اور 9% کے مترادف کیوں دیں گے؟ مگر گورنمنٹ از ناٹ ریڈی ٹو ٹیک ٹو گیٹ ان ٹو اٹ. government is not ready to get into it. Let's see. Saab, is weekend ke upar Toronto ke 6 subway stations ko block kiya jayega, band honge. Ye khabar bhi aap logon ke notice mein hi hai.
Tracks ko sahi karna hai.
Tracks ko sahi karna hai. Yahan se main batana chahti hu ki York University's low enrollment and reliance on the international students putting school at risk, auditor general ki report hai. Of course sare ke sare students jo hain private institutions ki taraf ja rahe hain, कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं. गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए.
गवर्नमेंट
कितने सुती पई है
आरफा जी. इस न्यूज के बाद गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर दिया.
क्या किया इंटरवीन?
पहले तो बता दूं कि यॉर्क यूनिवर्सिटी के 23% ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिसके अंदर ये लोग आते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, 20 और फ्यूअर स्टूडेंट्स के अंदर है. और अभी उन्होंने सैकड़ों की तादाद में प्रोफेसर वगैरह हायर किए थे, तो दे इन अदर वर्ड्स दे कैन नॉट अफोर्ड इट कि 20 स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हुए और एक प्रोफेसर उनकी पूरी टाइम ले रहा है. एनीवे हमारे जैक मिलर जो है इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि लिबरल्स जो हैं वो जो ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं यहां पर, उनका पहले ये था कि दे हैव टू हैव $10,000 इन देयर पॉकेट टू सपोर्ट देमसेल्फ इन कैनेडा. ये नहीं कि आते ही वो मांगना शुरू कर दें गवर्नमेंट से. तो उन्होंने जो है वो अब बढ़ा दिया है. अब उसको आज उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है, लिबरल गवर्नमेंट जो है, $20,600 मिनिमम आपके पास होना चाहिए. अब ये बताइए कि उससे जो है डिस्करेज करेंगे आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता नहीं है. वो भी उनके माँ बाप भी इधर उधर से उधार लेके पैसा
देखे. प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप बात कर लेना जो लोगों ने शुरू की हैं, पाकिस्तान की तबाही में बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी थी. पाकिस्तान की तबाही में सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि लोग अमीर हैं और मुल्क गरीब है. कैनेडा में भी हम उसी सिमत में जा रहे हैं कि गवर्नमेंट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि पीपल ओन है, ठीक है, वो अपने रिसोर्सेस को, अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए सर्टिफिकेशन ले रहे हैं. दे आर वेरी लीनियंट ऑन देयर स्टूडेंट्स और वो जाते हैं वहां जाके सेमिनार्स करते हैं, स्टूडेंट्स को लेके आते हैं. मुझे नहीं पता क्या वो स्पेशल बेट देते हैं स्टूडेंट्स को कि मोस्ट ऑफ
इंसेंटिव्स
अभी हम यहां से निकल के जाएं, आप खड़े हो ना जरा एग्लिंटन और टॉमकन के ऊपर, नुक्कर के ऊपर, मैं सागा में जाके खड़े हूं, आपको तल धरने की जगह नहीं मिलती. बिकॉज देर आर एंड दीज आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड दीज आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इनके ओनर्स के पास इतना भी दिमाग नहीं था कि दे कुड हैव देयर ओन नेम.
सो डोंट,
उन्होंने नाम रखा है अपने इंस्टीट्यूशन का बड़ी बड़ी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के नाम के ऊपर.
तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज का जिक्र कर रही है आप, बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी एक्सपेंसिव भी ज्यादा है. तो ये इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं इनको कुछ सीखना चाहिए ना.
मगर ये तो गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट को फिर करना चाहिए ना कि अगर आपने, देखिए मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान से हर बंदा पाकिस्तान से निकल के जाके फॉरेन एजुकेशन की बात कर लें, आप जो भी बात कर लें उस लिहाज से जाना चाहते हैं. सेम हिंदुस्तान से भी बेशुमार लोग हिंदुस्तान से भी निकलना चाहते हैं. आपकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एथनिक कम्युनिटी जो उन यूनिवर्सिटीज के अखराजात को पूरा करती है उन तक अप्रोच कैसे करती है, इस अप्रोच को यूनिवर्सिटीज को बढ़ाना चाहिए.
ऑफकोर्स यस. इसके बाद ये है कि मैं और आप और हम तमाम यूनिवर्सिटी के जितने भी चलाने वाले हैं उनको बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए कि वाई वी आर नॉट गेटिंग सो मैनी. और ये टॉमकिन और एग्लिंटन का आपने जिक्र किया, यहां पर सारे के सारे इंडिया और चाइना से लोग आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे?
क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज वो कहते हैं इंटीग्रेशन जो है ना, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. मैं आपको तो बताती हूँ कि बाज़ूकात लोग हमारे देखने के बाद हम फर्क और तफरीक कायम कर लेते हैं. हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी. एक और पोएम डॉक्टर जावेद जान की मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये जो हमने तबके बना दिए हैं ना, ये बड़ी अजीब सी बात है. और मैं आप ये कहते हैं मगर हम ही इंसानों ने तबके बनाए हैं. तबकियां विचों तकसीम इंसानों भूले पाले, ए नादानों दुनिया दी तारीख बताए, सिद्धा एक असूल सिखाए. तबकियां विच तकसीम इंसानों भोले पाले, ए नादानों दुनिया दी तारीख बताए, सिद्धा एक असूल सिखाए. दुनिया दे विच बस दो ही फिरके, इंसाना दे दो ही तबके, जालम ते मजलूम दा तबका, हाकम ते महकूम दा तबका, बाकी ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਤਕਸੀਮਾਂ ਰੰਗੋ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਫੈਲਾਏ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਬਕਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਬਕੋਂ ਕੀ ਜੋ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਮੇਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਤਬਕੇ ਹੈਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਾ ਤਬਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਮ ਕਾ ਤਬਕਾ, ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਕਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕੂਮ ਕਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਕਮ ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਐਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਮਜ਼ਹਬੋਂ ਕੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਹੀਂ ਕਲਚਰ ਕੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇਂ ਸਰਾਇਤ ਕਰਤਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਹੱਥ ਸੇ ਹੱਥ ਬਾਂਧ ਕੇ ਇੱਕ ਫਸੀਲ ਆਹਨੀ ਫਸੀਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਲੈਂ ਤੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰ ਹਾਕਿਮ ਕਭੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਆਰਿਫ ਮੁਜ਼ੱਫਰ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਕਾਰਬਰੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਸਕਾਰਬਰੋ ਮੇਂ ਰਾਈਟ ਕਸਟਮ ਕੈਬਨਿਟਰੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। ਬਾਤ ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਘਰੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋ ਹੋਲਡ ਕੀਆ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਕੀ ਸੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਤੋ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਕਿਚਨ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ। ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਬਾਇਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਓ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੋਪਸ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਸਟਮ ਕੈਬਨਿਟਰੀ ਕਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਦਿਸ ਯੰਗ ਮੈਨ ਸੈਫ ਇਨ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੂ ਓਨਸ ਇਟ। 3D ਮਸ਼ੀਨੇ ਇਹਨੇ ਜਰਮਨੀ ਕੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਟੈਲੀਅਨ ਐਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੂਲਸ ਹੈ, ਇਟੈਲੀਅਨ ਐਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੂਲਸ 3D ਜਨਰੇਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਕੇ ਕਿਚਨ ਕਾ, ਆਪਕੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਕਾ, ਹਾਊ ਵੁਡ ਇਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ। ਤੋ ਰਾਈਟ ਕਸਟਮ ਕੈਬਨਿਟਰੀ ਪੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਜੀਏ। ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਜ ਅਗਰ ਆਪ ਕਾਮ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਪੇ ਬੈਕ ਇਨ 12 ਮੰਥ, ਸੋ ਇਨ ਸਪਰਿੰਗ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਸੇਲ ਪੇ ਲਗਾਈਏ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਜੀਏ ਆਪ, ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਇਟ ਬੈਕ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਅ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਫਲੋਰਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੋ 6473384 73 6473384 73 ਉਨਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਸਟਮ ਕੈਬਨਿਟਰੀ ਕਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੇ ਦਾਂਤੋਂ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਾਊਨਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਤੋ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ ਨਾਓ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸਨੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕੋ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਂਤੋਂ ਕੋ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੋ ਸੋਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਕੇ ਦਾਂਤੋਂ ਆਪਕੇ ਗਮਸ ਮੇਂ ਪਾਕਿਟਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਥਰੂ ਆਲ ਦੀਜ਼। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੇ ਲੀਏ 2023 and 2024 ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ 2 clinics, 150 ਯੈਲੋ ਐਵਨਸ ਬੁਲੀਵਾਰਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਰ ਰੋਡ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋ ਆਪ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਜਨਾਬ ਫਿਆਜ਼ ਵਿਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਨੇ ਕੇ ਹੈ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ। ਫਿਆਜ਼ ਵਿਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਆਜ ਕੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ। ਹਮ ਇੱਕ ਔਰ ਤਸਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਾ ਤਸਕਰਾ ਆਪ ਕਰੇਂਗੇ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰ ਕਾ ਤਸਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏ।
तो अभी क्या, थोड़े दिनों, कई जमाने से जब हमारे पास चीफ ऑफ पुलिस हमारे स्टूडियो में आए थे उस दिन भी हमने इसका जिक्र किया था कि ये जो गाड़ियों की चोरी है इसमें बगैर सर्विस ओंटेरियो एम्प्लॉयज के ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये विन चेंज कर दें, इसकी किस तरीके से दोबारा से रीसेल कर दें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनसाइडर्स
ब्रोकरेज के पास, ये जो आपकी डीलरशिप्स होती हैं उनके पास होती है, उनके सेल्समैन के पास होती है,
या ये कि ये उसके पास होती है, उन्होंने सेल्समैन वगैरह को तो पकड़ लिया कई दफा, मगर अब
सर्विस ओंटेरियो के पास भी होती है,
सर्विस ओंटेरियो के पास पूरी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास। तो वो जो है वो अब एक डब प्रोजेक्ट सफारी के नाम से फरवरी में
टोरंटो पुलिस ने एक मुहिम शुरू की थी, जो इन्वेस्टिगेशन की तो उसके अंदर उनको ऑलमोस्ट 25 एम्प्लॉइज ऑफ सर्विस ऑन्टेरियो के जो है उनको
उनको और उनके नाम आए।
हाँ जी, नाम आ गए, वो अभी मेरे पास यहाँ पर तो नहीं है, मगर उसमें कई हमारे लोग हैं। नाम देखे मैंने, उसमें कई लोग हमारे भी हैं, मगर हर किस्म का, हर कलर, हर रेस, हर रिलीजन का लोग उसमें है। एंड पुलिस ने $1.5 million कैश इन लोगों के पास से, नॉट एम्प्लॉइज के पास से, मगर वो जो पूरा गैंग है उनके पास से, एंड लग्जरी व्हीकल्स को उन्हें लिया है। मगर कहने की बात यह है कि बगैर उनकी हेल्प के ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर विन को चेंज भी कर दें, एक 2023 की एक लेक्सस है 350, उसका जो विन चेंज कर देंगे तो वो तो विन तो जब तक कोई वहां पर सर्विस ऑन्टेरियो का एम्प्लॉई चेंज ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि चेंज कोई कर सकता है। वो तो आएगी नहीं उसके अंदर सामने, तो वो विन चेंज करके उसको रीसेल कर देते थे। तो आज बड़ा उन्होंने पकड़ा है कई लोगों को, 25 लोग जो है उनके नाम उन्होंने दे दिए।
आई विश कि उनके नाम मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो, वी कैन अनाउंस इट। मगर वही बात है ना, चोर के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि अगर हमने कोई चीज, जाहिर न्यूज आती है तो हम न्यूज को वेबसाइट पे डालते हैं, देन वी स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दीज पीपल, रिमूव माई नेम फ्रॉम देयर, रिमूव माई, I said, we already removed. मगर वो फिर गूगल के बीच में कहीं कहीं वो हमारी वेबसाइट के रेफरेंस से वो नाम जब फंसा होता है, और आप यकीन कीजिए बाकायदा ये लोग फिर हमें थ्रेट करते हैं। तो ज़ाहिर है मैंने तो खैर कभी मैं इतनी रूड नहीं हुई कि मैं ये कहूँ कि भाई तुमको चोरी करनी नहीं चाहिए थी ताकि तुम्हारा नाम खबर ना लगाते। यू नो यू बेटर कॉल द पुलिस टू रिमूव इट। सो वी ऑलरेडी रिमूव इट फ्रॉम द न्यूज़। फयाज विलाना साहब मेरे साथ हैं। फयाज विलाना साहब आज की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मेरे कंसर्न के लिहाज से, कि निजकारी की अगर बात हो तो फवाद हसन फवाद साहब कहते हैं कि जी PIA को तो कोई अब और फंड नहीं करेगा, और स्टील मिल के बारे में उन्होंने ये कह दिया है कि ये तो एक स्क्रैप से ज़्यादा अब है ही नहीं, ज़्यादा 6-7 साल से बंद है। तो मुझे तो डर लगता है कि फिर वो इंडियन जेंटलमैन जो स्क्रैप का कारोबार करते हैं, बस वही फिर इसको लीज करेंगे, क्योंकि हमारी यारियां भी हैं। फयाज विलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मरहबा जी, आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
सर बहुत शुक्रिया। फयाज विलाना साहब, दुनिया में तो बड़ी अजीबोगरीब आजाद, एंथनी ब्लिंकन का भी पैगाम था कि उन्होंने भी, मुझे यकीन नहीं आया कि जो आबादकार हैं इसराइल के उनके वीज़े पे पाबंदी, आज बेल्जियम ने भी पाबंदी लगा दी। मगर दुनिया की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदलती चली जा रही है, मगर पाकिस्तान इस सूरत हाल पे बड़ा मुतासर है। और आज BBC ने बड़ा कमाल का जनाब एक आर्टिकल लिख मारा है जिसमें पूरा कच्चा चट्टा खोल दिया है कि नूर खान एयरबेस से कौन कौन सी फ्लाइट्स निकली हैं और असला लेके गई हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि भाई ब्लैक हो रहा है, हमने तो इंग्लैंड को भेजा था, और ये वो दौर था जिसमें जनाब जनरल बाजवा साहब जो थे वो इंग्लैंड गए थे। सवाल तो मेरे बेशुमार हो गए, मगर टाइम आपके पास 10 मिनट है, जवाब आपने 10 मिनट में देना।
आपको याद होगा ये BBC की जिस स्टोरी की आप बात कर रहे हैं, ये हम तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले एग्जैक्टली फ्लाइट्स नंबर तक हम दे चुके हैं, अपने इसी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, और हमने हवाला दिया था theintercept.com का। दी इंटरसेप्ट वालों ने एग्जैक्टली कि कब चली, कितनी चली, कहां से असला चला, कहां पहुंचा। हमें तो अब जो है ज्यादा खतरा ये सब, बल्कि एक स्टोरी इस पे आ भी चुकी है कि जो यूक्रेन गया असला, वहां जब रशियन फोर्सेस ने कुछ इलाके पे कब्जा किया तो वहां से जो उन्होंने माल गनीमत उन्हें मिला उसमें कुछ असला भी मिला, वो असला रशियन ने लेके वो वहां से निकल आया, मिडल ईस्ट से कहीं से निकल आया, और वहां से पता कराया गया तो पता चला जी कि रशिया ने डोनेट किया है उन्हें। अब पता नहीं ये हसन नसरुल्ला वगैरह, हिजबुल्ला वगैरह को या किसको डोनेट किया है उन्होंने, तो हमारा तो पता नहीं हम बेचते किसको हैं, वहां कंपनियां किसकी होती हैं, खरीदने वाला कौन होता है, पहुंचता कहाँ है, आगे से माले गनीमत में उसे लूट कौन लेता है, और आखिर में पता नहीं लगता कि कौन से सीनों पे जाके वो हमारी बेची हुई गोलियां पैरस्त होती हैं। तो अगर हुकूमत स्ट्रांग हो, लोग, लीडर आपका कोई अच्छा हो जिसको वाकई दुनिया में कहा सुना जाए और पूछा जाए, तो फिर तो इस तरह की चीजें पहले तो हों ही नहीं, अगर हों तो फिर उन पर कोई बात करे और रोका जा सके कि भाई ये हमारे साथ ये काम ना करो, ये मजाक ना करो हमारे साथ, और अगर हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, हम अगर अपने पांव पर खड़े होना शुरू हो जाएं और हम इन बिसाखियों का सहारा छोड़ दें, तो फिर शायद हम इस तरह की अंडर द टेबल डील्स भी करने से बाज आ जाएं। अगर हमने बेचना है तो ठीक है, बेचें, एलानिया बेचें, जिसको बेचना है खुद बेचें, हुकूमत पाकिस्तान बेचे, और आप इस तरह की फेक कंपनीज खड़ी करके बेचते आप मिस्टर एक्स को हैं, वसूल मिस्टर वाई करता है और यूज जाके मिस्टर जेड करता है। ये दो नंबरियां कमजोर हुकूमतों, कमजोर लोगों की होती हैं। अल्लाह करे हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर आ जाए जिसके पीछे पब्लिक हो और उसे पता हो कि पब्लिक की आवाज क्या है, पब्लिक की सोच क्या है और पब्लिक चाहती क्या है, और पब्लिक की मंशा के मुताबिक ही वो फैसले करे, और जब वो फैसले करे तो उसके पीछे पब्लिक खड़ी रहे और उसे पता हो कि यही पाकिस्तान के अवाम की, कौम की मंशा है। कौमें कौमों के खिलाफ भी होती हैं, कौमें लड़ती भी हैं, कौमें डिफेंस भी करती हैं, कौमें एक दूसरे के लिए भी जाके लड़ती हैं, लेकिन वो फैसले कौमी सतह पे होते हैं, जाती सत्ता पे नहीं होते, लोगों के पर्सनल अकाउंट्स में फेवर्स नहीं जाती। और बाद में पता चलता है, आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ, अल्लाह उनके सारे गुनाह माफ करे और उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन एक टेलीविजन में इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे अकाउंट में $1.5 अरब आए थे। किसने भेजे थे? दोस्तों ने भेजे थे। कहां से आए थे? सऊदीया से आए थे। क्यों आए थे? इसका जवाब उनके पास नहीं था। इसी तरह कल तक हमें पता चले कि हमारे एक्स आर्मी चीफ या मौजूदा आर्मी चीफ या और किसी अहम बंदे के अकाउंट में इतने अरब डॉलर चले गए हैं, और फिर बाद में उसके पास भी इसका जवाब ना हो कि भेजे तो दोस्तों ने थे, क्यों भेजे थे इसका जवाब नहीं है। तो अगर इस तरह के जाती वेस्टेड इंटरेस्ट में फैसले होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसी तरह जग असाई होगी हमारी। जी,
बड़ी हैरत की बात है, आपने तो इसको एक्सप्लेन किया। मेरे सवालात जो कंसर्न्स हैं, एक औरत होने के नाते, पाकिस्तानी औरत होने के नाते, और मेरे पे मगरिब की छाप भी नहीं है। पाकिस्तान में जब मैं औरत की तरफ देखती हूँ तो पहले तो ये कहा गया था कि औरत का इक्तदार भी नहीं होगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बड़ी डिग्निटी के साथ उन्होंने काम किया, मगर जब वो इलेक्शन में आई तो उनके किरदार के ऊपर हमला किया गया, मगर जुबाबंदी थी, थोड़ी सी वैल्यूज़ थी। भुट्टो साहब का वक्त आता है और भुट्टो साहब के जाने के बाद जिस तरह से वो गए हैं और उसके जाने के बाद मेरा ख्याल है इनका तलवार हुआ करता या तीर इनका निशान होता था,
तलवार निशान था, तीर तो बेनजीर के दौर में।
फिर इन्होंने जनाब तलवार का, जी हम तलवार नहीं देंगे शायद तलवार के नाम से, मगर भुट्टो साहब को वोट डालना था, वो तीर हो या तलवार हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा फिर जीतती हैं। मगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की भी जब करेक्टर असैसिनेशन हुई, जियाउल हक साहब ने बदतरीन काम किए थे, मगर उन्होंने फिर करेक्टर असैसिनेशन नहीं की थी। मगर उसके बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा जब इंग्लैंड आती हैं तो उस खबर को भी दबा लिया गया था, उस कल्चर के मुताबिक डांस होते हुए तस्वीर आई थी। मगर फिर मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के किरदार को बहुत उछाला था और उसमें 100% झूठ था। जाहिर है इन मुल्कों में मेरे आपके बच्चे बाज़ूकात ओवरनाइट स्लीप भी करते हैं, बाज़ूकात बच्चे अपने दोस्तों के साथ नाचते गाते भी हैं, मगर इसका ये मकसद नहीं होता कि मगर किरदार के ऊपर अटैक किया गया था, हालांकि मजहब के लिहाज से जो बुक ऑफ मैनुअल बुक जो है उसमें। आज जो मैं सूरत हाल देख रही हूं, यानी हम अपने किरदार से, कहते हैं ना कि अगर आप दुश्मन भी हैं तो आप अपने मर्तबे के लिहाज से ट्रीट करें अपने दुश्मन के साथ भी। आज जो करेक्टर असैसिनेशन जिसमें मर्दों की भी हो रही है, औरतों, और ये सिर्फ इसने नहीं, मेरा ख्याल है अभी ये पिछले दिनों में मुस्लिम लीग के भी किसी बंदे की एक कोई न्यूड वीडियो थी जो आ गई थी। आप क्या समझते हैं कि हम अपनी जो फैमिली वैल्यूज हैं, क्या हम उनको गंवा नहीं रहे? ये कौम एट द एंड ऑफ द डे किधर जाके ठहरेगी? व्हाट इज द एंड स्टोरी? आखिरी रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? मुझे तो बहुत बदतरीन नजर आ रहा है कि अगर इस तरह बेलिबास हो गई हमने चलना फिरना है तो हमारे बच्चों से हम क्या तवक्को करेंगे?
अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है ये कर कौन रहा है? आम आदमी तो नहीं कर रहा, आम लोग तो पार्टीज भी करते हैं। आप देखें पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी शादी होगी आजकल जिसमें बाकायदा लड़के लड़कियों के ग्रुप जो है वो डांस की पहले हफ्ता हफ्ता प्रैक्टिस करते हैं, फिर मेहंदी होती है, फिर डांस होते हैं, और वहां कोई इश्यू नहीं होता। हर फैमिली में ये मेहंदियां हो रही हैं, लड़कों की अलग ढोलकियां होती हैं, लड़कियों की अलग ढोलकियां होती हैं, और वह हमारे लोग जो हैं वो मॉडर्न लिबरल इस्लामिक सोच रखने वाले लोग हैं जिसमें वो रमजान शरीफ में भी भरपूर तरीके से रमजान इंजॉय करते हैं, मिलादुन्नबी को भी इंजॉय करते हैं, उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जो एक मजहबी अकीदत और एहतराम से होती है, फिर हज के दिनों में भी उसी मजहबी एक होता है, फिर मुहर्रम के दिनों में भी हमारी कौम बड़ी बैलेंस चल रही है, हमारे आम लोगों के जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है ये सियासतदान कर रहे हैं और हुक्मरान तबका कर रहा है, और हुक्मरान कौन है? सियासतदान ही है, वही अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है। अफसोस से कहना पड़ता है कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे जब, तो अपोजिशन लीडर होते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना है। अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब इस पे बात उन्होंने शुरू कर दी है, और उन्होंने बैक एंड पे मुस्लिम लीग नून से रबते भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपने मामला, उनकी डील तय हो रही है कि जो ही ये इलेक्शन केयर टेकर सेटअप खत्म होगा और आइंदा सेटअप में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाएगी, जिस तरह की कोशिश की जा रही है, तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुस्लिम लीग नून में कोई बड़ा ओहदा लेंगे और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो तो जरदारी साहब उन्हें अपना बेटा कहते हैं, उन्होंने तो कहीं नहीं जाना, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी है। तो इन सब लोगों को, जिन्होंने पहले शायद वो सियासत में इतने नहीं थे, अब उन्हें सियासत का बाकायदा जो है खून उनके मुंह को लग चुका है, अब उन्होंने ऑफिशियली, इन सब लोगों ने, ये जितने केयर टेकर हैं, इन सब ने सियासत में आना है, और इन्होंने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी है, या कोई बलोचिस्तान अवामी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, या तहरीके इस्तेकाम पार्टी में अगर कोई चांस बनता हुआ तो वहां ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये बेसिकली सारे एंटी इमरान ग्रुप है, और ये हुकूमत में है इस वक्त। ये सारी जो करेक्टराइजेशन हो रही है ये एंटी इमरान ग्रुप कर रहा है, सियासतदान कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी जब इसको देखता है तो वो इनसे अगर पहले कम मुतनफर था, अब पहले से भी ज्यादा मुतनफर हो रहा है। हाँ, अगर इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के लोग इस तरह का काम करें, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ या मौलाना फजल रहमान के खिलाफ या आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ या उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ, क्योंकि दूध के धुले हुए तो कोई भी नहीं है,